भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरे। यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम्। कलौ नास्तेव 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 गतिर्यन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवतम षष्ठ स्कंध अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 27।
ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना। तन्नोपसीदत हरिर्गदयाभिगुप्तम् नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे। ते वे देव देवताओं सिद्धः तथा सिद्ध लोके वासियों के द्वारा परिगीत गाई गई पवित्र गाथा शुद्ध कथाएं ये जो साधवः भक्तजन समदृशः समानदर्शी भगवत प्रपन्नाः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत तान उनको ना नहीं उपसीदत पास जाना चाहिए। हरे हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गदया गदा से अभिगुप्तान
पूरी तरह सुरक्षित ना नहीं एशाम इनका वयम हम नचा तथा नहीं वयः असीम कालः प्रभुवाम समर्थ हैं दंडे दंड देने में। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यमराज जी कहते हैं, हे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। वे समदर्शी होते हैं और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों के द्वारा गाई जाती है। तुम लोग उनके निकट भी मत जाना। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। तात्पर्य, वस्तुतः यमराज ने अपने सेवकों को आगाह किया, मेरे प्रिय सेवकों, इसके पूर्व भक्तों को तंग करने के लिए तुम चाहे जो भी करते रहे हो, परंतु अब से उसे बंद कर दो। जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं होना चाहिए। जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी है तथा जो भगवान नाम का निरंतर कीर्तन करते हैं, उनकी प्रशंसा देवता तथा सिद्ध लोक के वासी तक करते हैं। वे भक्त इतने सम्माननीय तथा उच्च हैं कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा स्वयं अपने हाथों में गदा लेकर करते हैं। अतः इस बार जो तुमने किया है उसकी उपेक्षा करते हुए आगे से कभी भी तुम ऐसे भक्त के पास मत जाना, अन्यथा तुम्हें भगवान विष्णु की गदा द्वारा मार दिया जाएगा। अतएव यह मेरी चेतावनी है, भगवान विष्णु अभक्तों को गदा तथा चक्र से दंडित करते हैं। तुम लोग भक्तों के साथ छेड़छाड़ करके दंड का खतरा मत मोल लो। बहुत डेंजर है। तुम ही नहीं, यदि ब्रह्मा को या मुझे भी उन्हें दंड देना हो तो भगवान विष्णु हमें ही दंड देंगे। इसलिए अब इसके बाद भक्तों को कभी तंग मत करना। यमराज जी की जय। अखिल रस सिंधु दीन बंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरूप रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राण धन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ हो भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम भागवत महापुराण के आश्रय में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के इस प्रांगण में हम सब उपस्थित हुए हैं, यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। विगत कई दिनों से आप सभी भक्तजन इस प्रसंग को सुनते आ रहे हैं। ये जो प्रसंग चल रहा है, जो वार्तालाप चल रहा है, एक महाजन यमराज और उनके सेवकों के मध्य चल रहा है। एक बात तो यहां स्पष्ट है कि हमेशा भक्तों में रुचि होनी चाहिए कि बड़े बड़े लोगों से सुना जाए। बुरा न मानो मूर्खों का जो करे अपमान, जिसमें जैसी वस्तु है वैसे उसका दान। किसी अज्ञानी व्यक्ति से सुनोगे, उसके भीतर जो है वो वही देगा। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सुनोगे, उसमें जो है वही देगा। श्री यमराज जी के हृदय में क्या है, उनका हार्दिक भाव क्या था, और संसार के प्रति, अपनी सेवा के प्रति, विश्व जनता के प्रति उनकी भावना कैसी थी, वो सब उनकी वाणी में, उनके शब्दों में झलक रहे थे। महाजन, महाजन उन्हें कहते हैं जिनके भीतर महानता आती है। भगवत गीता में भगवान ने कहा स महात्मा सुदुर्लभः, महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मा वही होते हैं जिनके मन में ईश्वर की समझ, इस विश्व रचना के पीछे जो रचनाकार है उसके प्रति कृतज्ञता और सभी जीवों के प्रति दया की दृष्टि हो, उन्हें महात्मा कहते हैं। महात्मा नामस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, संसार में जिन्होंने हमें बनाया यदि उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, हमारे में महानता कैसी है। तो सबसे पहले एक महाजन के वक्तव्य से हमको यहां देखना चाहिए। अपने सेवकों से कहा, मेरे दूतों मतः परो अन्यः, जो तुमने आज तक सोचा है कि संसार के मालिक और इस संसार का हर्ता कर्ता मैं हूं, ये तुम्हारी गलत समझ है। सबसे पहले समझ लो मैं किसी का सेवक हूं, सारा अधिकार मुझ में नहीं है, मुझे कोई चला रहा है, वो विधि देने वाला कोई और है, विधि की रक्षा करने वाला मैं सेवक हूं, विधि कोई और है, कोई और ने दी है। क्या करते हो, उन्होंने पूरी बात पीछे बताई, उसके पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा ये संसार में जैसे वस्त्र हैं, ताना बाने में केवल धागा ही धागा, रुई रुई होती है, वैसे वो प्रभु ने संसार को बनाकर ये संसार में कण कण में विराजमान करता है, वो जैसे चाहता है वैसे हम करने को बाध्य है। जैसे कोई गृह का स्वामी, कोई किसान किसी बैल के नाक पे रस्सी डाल करके उसको नियंत्रण करता है, ऐसे ही हम सभी शासकों को एक परम शासक नियंत्रण करता है। और उनके भक्त इतने महान होते हैं, उनके सेवक इतने महान होते हैं, भूतानि विष्णुरु सुर पूजितानि अद्भुत लिंगानी महाद्भुतानी, वो तो अद्भुत है ही है, उनके सेवक भी महा अद्भुत होते हैं, और वे उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए इस सारे त्रिलोक में चर अचर ब्रह्मांड में भ्रमण किया करते हैं। भूतानी विष्णुर सुरपूजितानी दुर्दर्श लिंगानी महाद्भुतानी, भगवान श्रीहरि को दुर्दर्श लिंग कहा जाता है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, लिंग्यते अनेन इति लिंगम, लिंगते माने जानना, किसके द्वारा, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का प्रकार, किसी व्यक्ति का स्वभाव, किसी वस्तु की प्रकृति जानी जाती है, उसको उस वस्तु के अथवा व्यक्ति का लिंग कहते हैं। जैसे कोई बालिका है, उसने विवाह किया कि नहीं किया, उसके लिंग से पहचान में वो आ जाती है। वो मांग में सिंदूर भरती है, चूड़ियां पहनती हैं, मंगलसूत्र धारण करती है, तब पता चलता है ये किसकी हो चुकी है। किस व्यक्ति ने सन्यास ले लिया है उसका लिंग क्या होगा, कि पहले लांग लगा करके पहनते थे, अब लुंगी लगा करके चलें। हाथ में एक दंड जरूर रहेगा। यदि मायावाद संप्रदाय के हैं तो सीखा कटवा देगा, यदि वैष्णव संप्रदाय का है तो उसकी सीखा रहेगी। तो दुर्दर्श लिंग शब्द का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण को आप किसी विशेष चिन्ह से चिन्हित नहीं कर सकते। यदि आप उनको कहोगे गिरिवरधारी, बिल्कुल सही है, पर कोई कहेगा मंदरधारी, वहां भी आपको सहमत होना पड़ेगा। कोई कहेगा चक्रधारी, ये भी तुमको मानना पड़ेगा। और कोई कहेगा दंतधारी, वो भी मानना पड़ेगा। दंत पाणी, भगवान चक्र भी धारण करते हैं और कुबले या पेड़ के दंत भी धारण करते हैं। दुर्दर्श लिंग, ये संसार में जो भी चिन्ह है उन चिन्हों के द्वारा भगवान और भगवान के भक्तों को समझना अत्यंत कष्टकर है। तो इत्यादि इत्यादि बातों से यमराज जी ने अपने भक्तों को संतुष्ट किया। अंततः 12 महाजनों के नाम गिनाए और अंत में अपना नाम लिया। नाम तो स्पष्ट रूप से नहीं लिया, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर बयासकी वयम, हम लोग हैं। तो जब हम कहेंगे तो यमह कह देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आखरे 12वें द्वादश महाजनों में अंतिम महाजनों की गिनती में यमराज आते हैं। तो महाजनों की जो भाषा है, महाजनों के जो शब्द है, उनकी वाणी उनके व्यवहार से झलकता है ईश्वर के प्रति कितनी लयालिटी है। वो कहते हैं मेरे भक्तों, जो हो गया सो हो गया, उस प्रभु से मैं क्षमा की याचना कर लूंगा, गलती मांग लूंगा, पर आज से तुम मत जाना। किसके पास मत जाना? बोले उनके भक्तों के पास मत जाना। क्यों नहीं जाएंगे? बोले जाओगे तो खतरा है। क्या खतरा है? गदयाभिगुप्ता। बोले भगवान के जो भक्त होते हैं सदैव उनकी रक्षा करने वाला श्रीहरि होता है। इस श्लोक का जो फोकल पॉइंट है यही है कि हम सबका जीवन एक ऐसे विषम संकटमय स्थिति में है, हम कल्पना तक नहीं कर सकते। और दूसरे क्षण में हम पर कौन सी विपत्ति आने वाली है यह भी हम नहीं जानते, यह भी हम नहीं जानते, कोई भी विद्वान नहीं जानता दूसरे क्षण में क्या होगा। हानि लाभ जन्म मरण और क्या है, यस अपयस विधि हार, नोबडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट। इसलिए बुद्धिमत्ता किसमें है? बुद्धिमत्ता इसी में है जो हमारी भलाई को जानता है। जयविद हित होइ नाथ मोरा, मैं नहीं जानता मेरा भला को, वो जानता है क्योंकि सो सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानता है। विषान महाग्नि, कुंती कहती है विष से कैसे बचाव करनी है, वो जानता है। महाग्नि वो सो अग्नि से कैसे उनकी रक्षा करनी है, वो जानता है। विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात्, वो भयंकर राक्षस के मुख से कैसे बचाना है, वो जानता है। असत सभायाम, वो जानता है। कौन जानता है? द्रौपदी पर जब विपत्ति आई, दुशासन जब गया और उनके केस पकड़कर उनको खींचता हुआ लेके आ रहा था, द्रौपदी उतना भयभीत नहीं थी ना। क्यों नहीं थी? वो छत्राणी थी, वो जानती थी मेरे 5 पति बड़े ही ताकतवर है। मेरे 5 पतियों में ऐसा एक पति है
जिनके गांडिव की जब प्रत्यंचा चढ़ती है, यम कुबेर वरुण थर थर कांपने लगते हैं, जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से रणभूमि में भगवान शिव को प्रसन्न किया था, ऐसे पति हैं ये दुशासन, ये क्या कर लेगा मेरा। द्रौपदी जाती है, सबसे पहले पांच पतियों के पास जाती है, एक एक के पास गई, सबने सर झुका लिया, चुप हो गए। द्रौपदी का अहंकार चूर चूर हो गया, पति पर जो भरोसेमंद होकर के रह रही थी उनका भरोसा एक पल में टूट गया। एक एक से बोली, आप गांडीवधारी अर्जुन हो, आपने रणभूमि में भगवान शंभु को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया है, कहां है आपकी शक्ति, कहां है आपका गांडीव, आपकी विवाहिता पत्नी अपमानित हो रही है, कहां है तुम्हारा पुरुषार्थ, आप धर्मराज हो, एक एक से कहती है। जब उसका आश्रय उसका भरोसा टूट जाता है, फिर बड़ों के पास जाती है, आप पितामह हो, मैं आपकी पुत्री हूं, ऐसा ना कभी हुआ था ना कभी होगा, आप कैसे देख सकते हैं कि भरी सभा में मेरी इज्जत लूटेगी, आप द्रोणाचार्य हो, आप कृपाचार्य हो, आप कृपा वर्षाने वाले हो, क्या है कि स्त्री के भरी सभा में इज्जत उसका अपमान हो रहा है, आप देखते रह जाओगे। आप महाभारत पढ़िए, एक एक के पास जाती है, शायद इस विश्व में ऐसे योद्धा कहीं होंगे जो उस सभा में उपस्थित थे, भीष्म जैसा योद्धा न भूतो न भविष्यति, मृत्यु विजय का वरदान जिसको प्राप्त था, चुप हो गए। क्या करते, क्या करती थी वो दुशासन, 10,000 बल का वो फोर्स दे रहा था। अच्छा मान लीजिए द्रौपदी के पास बल आ भी जाए, उदाहरण के रूप में, ये सब चिंतन पर की बात है, मान लीजिए दुशासन, जिसमें दुशासन में जितनी ताकत उतनी ताकत द्रौपदी में आ भी जाए, क्या दुर्घटना घटेगी, सोचिए। दुशासन मान लीजिए ये फूल माला है, ये इतना सा फोर्स को सहन कर सकती है, ज्यादा फोर्स करो टूट गई। द्रौपदी की जो साड़ी थी वो 10,000 शक्तियों की ताकत को सहन करने वाली नहीं थी, अगर द्रौपदी बल प्रयोग करती वो साड़ी टुकड़ी टुकड़ी हो जाती, क्या इसकी इज्जत बच पाती, नहीं बच पाती। द्रौपदी ने बहुत अच्छा किया, हे गोविंद द्वारकावासिन, ऊपर हाथ उठा लिया, अब ठाकुर जी से रहा नहीं किया। असत सभाया, उस असत सभा में, उस भारत के इतिहास में जो काला दिन था, उसके साक्षी गोविंद बने। भगवान का अंबर अवतार होता है। दुशासन को समझ में नहीं आया कौन सी मिल की साड़ी द्रौपदी पहन रखी है, कहां से इतनी साड़ी आ रही है, खेचत खेचत दुशासन थक्यो, थक गया, गिर पड़ा, हाहाकार मच गया उस सभा में। जरा विचार करके देखिए, क्या द्रौपदी के पास इतनी ताकत थी, नहीं हो पा, जो होने वाला था वो किसी की सोच में भी नहीं था, वो सोच में भी नहीं था, द्रौपदी भी नहीं सोच पाती थी कि इतनी साड़ी लंबी भी हो सकती है और एक क्षण में मुझे कोई देगा, नो बडी, चाहे कितने भीष्म जी भी नहीं सोचे होंगे, न भूतो न भविष्यति। इसलिए मित्रों गदयामि गुप्ता असत सभायां वनवास कृच्छत मृधे मृधे महारथास्त्र तु द्रोण्यस्त्र तो चश्म हरि रे भिरक्षता, वो हरि हमारी रक्षा करता है। हमारी बेवकूफी की तब हद हो जाती है जब हम स्वयं की रक्षा करने के लिए आगे आते हैं। ये सबसे बड़ी नादानी है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए भक्त वो बुद्धिमान होता है जो संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाता है। निज बुद्धि बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुमार कृपा ते अच्छी आश्रय करिया। अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा सर्वम कर्तुम स ईश्वर। जो होनी उसको अनहोनी, जो अनहोनी उसको होनी में बदल दे, सब कुछ करने में जो समर्थ है वो है ईश्वर। वो भक्त सबसे ज्यादा ना समझ माना जाएगा जो अपनी ताकत पर भरोसेमंद होकर के बैठता है, और दूसरी नादानी उसकी मानी जाएगी। इतने पर भी यदि वो समर्पण नहीं कर देता, ये श्लोक इसी को इंडिकेट करता है। गदयाभिगुप्तान, और उस भक्त का यश बड़े बड़े सिद्ध देव इंद्र मुनिंद्र गण करते हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, वो सामान्य नहीं होता, वो पवित्र हो जाता है। पवित्र के साथ मिलने वाला पावन हो जाता है, अनंत के साथ मिलने वाला अनंतत्व को प्राप्त करता है, भूमा के साथ मिलने वाला भूमा ही होता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि यमराज जी के इस प्रवचन से यही जीवन में बिठा ले कि आज ही हम समर्पित हो जाए। ये समर्पण एक क्रिया है, एक भाव है। ये ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवो समदृश भगवत प्रपन्ना। ये भगवत प्रपन्ना भगवान के शरणागत भक्त की सो विशेषण है। जो शरणागत होता है वही समदर्शी होता है, कोई दूसरा समदर्शी नहीं हो पाएगा। जो समदर्शी होता है, शरणागत होता है, वही साधु होता है। साधुता के लिए और कहीं मोहरे लगाने की आवश्यकता नहीं है, साधु वही है जो शरणागत है। और वो शरणागति आज भी हो सकती है, प्रभुपाद जी कहते हैं लाखों जन्मों के बाद नहीं हो सकती। और भगवान हमारे इधर उनका एक ही नियम है, जो शरणागत होगा उसके रक्षा का भार वो लेगा। ये ऐसा नहीं कि तुम 50% शरणागत हो और हम 50% कृपा करेंगे, ये हिसाब किताब वहां नहीं चलने वाला है, नहीं चलेगा। जब तक द्रौपदी पूर्ण शरणागत नहीं हो गई थी तब तक कृपा का अवतरण नहीं हुआ। यही तो शरणागत का रहस्य है। ये परसेंट वाला काम यहां नहीं चलता। कृष्ण चाहते हैं तुम पूर्णता से मेरे पास आओ, हम पूर्णतया तुम पर कृपा करेंगे, और मेरी कृपा के बारे में तुमको कोई जानकारी नहीं है। वो अघटन घटन पटियसी माया, माया का एक अर्थ होता है कृपा। वो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। भगवत प्रपन्ना, भगवान ने शर्त लिखी, मर्त्य जदात्यक्त समस्त कर्मा। आप कहोगे प्रभु जी इस क्लास में हम शरणागत आज नहीं होंगे, आज तारीख अच्छी नहीं है, 23 तारीख, हम 25 तारीख को शरणागत होंगे। ठीक है, कृष्ण कहेंगे 25 तारीख को हम कृपा करेंगे। ठीक है, 2019 अच्छा साल नहीं है, 2020 को हम शरणागत होंगे। हाँ जी भाई, हम तब कृपा करेंगे। तुम 1000 जन्म अतिक्रम करके मेरे पास आओ, उसी दिन मैं तुम पर कृपा करूंगा। मर्त्यो जदात्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचकृषितो मे तदामृत तुम प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय चकल्पते वै सकल्पते वै। उसी दिन वो दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शरणागत होना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कब होंगे, और हो जाने में ही भलाई है। उसी व्यक्ति को साधु कहते हैं। श्री नरहरि भगवान कहते हैं, यत्र यत्र च मद्भक्ता साधवो हो समदर्शिनः, प्रशांतः समदर्शिनः, साधवो समुदाचार पुयन्ति अपि कीकटः। प्रहलाद, जहां जहां मेरे भक्त हो, प्रशांत चित्त वाले हो, समदर्शी हो, साधु का शब्द का अर्थ होता है साधवो समुदाचारा, जो शास्त्र विधान के अनुसार चलते हैं उनको साधु कहते हैं। मेरे मित्रों, ये सारे गुण अपने आप आएंगे यदि हमारे में शरणागति आ जाती है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसी एवरेस्ट आरोही का जीवन चरित्र पढ़िए जो एवरेस्ट श्रृंग पर चढ़ना चाहता है, देखिए उसके जीवन में कितनी तैयारी है। वो जानता है कि एवरेस्ट श्रृंग पर हम फतह करना चाहते हैं तो हमको परिवार को बहुत दूर छोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? सामान्य बात हम कह रहे हैं, केवल एवरेस्ट की बात कह रहे हैं, हमारे परिवार को अलविदा करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, उसके लिए जितना भी प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा। नंबर थ्री, वो सो हिमवात के साथ, वो बर्फीले हवा के साथ आपको संघर्ष करना पड़ेगा। नंबर फोर, कदम कदम तुमको ऊंचाई पर चढ़ते रहना पड़ेगा। नंबर फाइव, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होगा, तब कोई व्यक्ति एवरेस्ट तक फतह कर सकता है। ये तो एवरेस्ट की बात हमने कही, और कृष्ण तक पहुंचना एवरेस्ट से भी काफी ऊंचाई पर है, काफी ऊंचाई पर है। एक गोताखोर को कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो नहीं समझता कि जा रहा है वापस आएगा या नहीं आएगा। आप एवरेस्ट की कथा पढ़िए, एवरेस्ट जब चढ़ने वाले जहां जाते हैं वहां केवल लाशें बिछी हुई मिलती है, केवल लाशें मिलती है, देखते चले जाते हैं और उनको पता नहीं किस क्षण में उनकी लाशें ऐसे ही रहेगी। ऐसे नहीं फतह होता है, इसलिए शरणागति उसी का एक उसका चिन्ह है। जिस समय हमारे भीतर शरणागति आ जाएगी उसी दिन हमारे अंदर सारे गुण आ जाएंगे। प्रहलाद महाराज इसके पुष्टि करते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन। इसलिए मित्रों, यमराज कहते हैं जो भगवत प्रपन्न है, साधु है, जिनका यश देवलोक सिद्धलोक भी गायन होता है। भागवत में देखिए अनेक अनेक जगह में देवता लोगों ने गाया है, पर भागवत का एक प्रसंग है ध्रुव चरित्र, जहां गुरु ने शिष्य की कीर्ति गाई, अहो सुनिते पति देवताया। नारद जी ध्रुव का चरित्र गाते हैं, बोले देखो पतिव्रता स्त्री का पुत्र ध्रुव, और उन्होंने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। मृत्योर मूर्धनी पदम दत्वा आरूरो हो बरासनम, मृत्यु के माथे पर पैर रख करके मानो मृत्यु के सर को ठोकर मारता हुआ 5 वर्ष का बालक उस वैकुंठ का अधिकार प्राप्त करता है। सिद्ध लोग गाते हैं, सभी लोग गाते हैं, कुबेर आदि प्रशंसा करते हैं। इसलिए ये भक्तों के यश को बखान करते हुए यमराज जी कहते हैं, तत्रु तन तान नो उपसिदत, उनके पास मत जाना। क्यों नहीं जाना? हरेर गद यहां भी गुप्तान, अरे भाई वो भगवान श्रीहरि के गदा से ही रक्षित है, गुप्त माने रक्षित। हमारे ब्रज में गोप है, गोकुल है, गोप उसको कहते हैं जहां भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको गोप कहते हैं, गोपायते गोप्यते, ये रक्षार्थ में है। मित्रों,
यमराज जी साफ साफ कहते हैं मत जाना। क्यों मत जाना? जाओगे तो तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी हालत बुरी हो जाएगी। अब की बार तो तुमको छोड़ दिए, दोबारा जाओगे तो तुम्हारी हड्डी पसली इकट्ठी हो जाएगी, तुम्हारी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी, वहां मत जाना। इतना नहीं, इतने में नहीं रुके, कहें कि नैसाम वयम न वयह प्रभवाम दंडे, इनको मैं तो दंड नहीं दे सकता और महाकाल भी दंडित नहीं कर सकता। मित्रों ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यमराज जी कहते हैं मैं दंड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते हो? क्या समस्या है? आप दंडधर हो, भगवान ने आपको नियुक्त किया है, आप क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते यमराज जी? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यमराज जी ने कहा मैं सर्वोच्च शासक नहीं हूं। पहली बात यही है, याद रखो। प्रथम बात यही है, यमराज जी कहते हैं मेरे ऊपर कोई शासक है। आप कहोगे क्या प्रमाण है? प्रमाण है भागवत के दसम स्कंद के 45वें अध्याय में इसका प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा आते हैं, कंस को मारते हैं, पिता माता के चरणों को नमन करते हैं। हे माते, हे पिता, बालकों को जन्म देकर मां वात्सल्य स्नेह में डूबना चाहती है। दुर्भाग्य मेरा भी रहा, मैं आपसे वात्सल्य प्राप्त नहीं कर सका, और आपका भी भाग्य मंद रहा, आपने मुझको लेकर के जो आनंद पाना था आप ना पा सके। जो हो गया, हमको क्षमा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बलराम का व्रतोपनयन संस्कार होता है, तदुपरांत उनको सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेज दिया जाता है। मात्र 64 दिन में 64 कला विद्या का शिक्षा उनको प्राप्त हो जाती है। ओनली 64 डेज। किसी छात्र को चाहिए कि जब वो विद्या ग्रहण करें और ग्रहण के उपरांत वो गुरु को प्रसन्न करें। दोनों ने कहा हे गुरुदेव, आप जो दक्षिणा चाहते हो आप मांग लीजिए। दक्षिणा मांगने से पहले सांदीपनि मुनि अपनी भारिया के पास जाते हैं। विपत्ति के समय अपनी भारिया के पास जाना चाहिए। कभी कभी माताएं बहुत अच्छा परामर्श देती हैं। जहर पीने से पहले भगवान शंभु शिव उमा जी के सती के पास, पार्वती के पास, भवानी के पास गए थे। क्या करना चाहिए? पी लेना चाहिए? जाइए पी जाइए, अनुमति दे दी। अब ये संदीपनि मुनि की पत्नी कहती है सुनो, मैं जानती हूं तुम्हारे जितने शिष्य है, पर ये जो दोनों चेले है ये कोई सामान्य नहीं है, अतिमानवीय लीला है इनकी, इसलिए इनसे छोटी मोटी दक्षिणा नहीं मांगनी चाहिए। सांदीपन ने कहा फिर तुम बोलो क्या मांगना चाहिए। तो पत्नी आंसू बहाती हुई कहती है पता है, एक मेरा बेटा था, हम लोग प्रभास गए थे दर्शन करने, सागर में डूब गया था, आज होता कितना बड़ा हो जाए। जैसे मेरे पास ये खेलते हैं ऐसे वो बालक मेरे गोद में खेलता, क्यों ना हम कृष्ण बलराम से अपने पुत्र को मांगे। संदीपन ने कहा वाह, कितनी बढ़िया बुद्धि तुम्हारी, कितना बढ़िया परामर्श है, अब जाता हूं। जाकर के कृष्ण बलराम से कहते हैं मैं जानता हूं आप ईश्वर हो, अनेक वर्ष पूर्व मेरा पुत्र को समुद्र ने ले लिया था और हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र दोबारा मिल जाए। कृष्ण कहते हैं गुरुदेव बस यही आज्ञा है, अब जाते हैं। कृष्ण बलराम प्रभास छत्र जाते हैं, सागर से कहते हैं महाराज जल्दी जल्दी लाओ, रामावतार में सब कुछ आपने देख लिया, ज्यादा कुछ फजीहत हो जाएगी, तुम जल्दी जल्दी ले आओ। सागर को बोलने से पहले सागर एक मानव रूप धारण करके ठाकुर जी की पूजा करता है
और विनम्रता पूर्वक कहता है, प्रभु आपके गुरुपुत्र को मैंने नहीं लिया, मेरे गर्भ में एक असुर निवास करता है, पंचजन्य उन्होंने ले लिया है। अच्छा वो कहां रहता है? मेरे गर्भ में। ठाकुर जी ने छलांग मार दी सागर में। पंचजन्य के साथ घनघोर युद्ध हुआ तो उनके पेट को फाड़ डाला, लेकिन उनके भीतर नहीं मिला। उन्होंने कहा कहां, उन्होंने कहा इनको यमराज ने ले लिया। तो ठाकुर जी ने पंचजन्य के अंग को लेकर के अपने पास आए, वही उनके हाथ में आज भी शोभायमान है, जिनको कहते पांचजन्य शंख। ठाकुर जी ने पांचजन्य शंख लेकर के प्रथम बार यमपुर में वादन किया। यद्यपि नित्य शंख ये है, भगवान भी नित्य है, उनके आयुध भी नित्य है, पर लीला के रूप में ऐसे सब अवतार होता है। जैसे अग्निदेव ने खंड बन जब अध्ययन हुआ, अग्निदेव ने अनेक अनेक वस्तु दी, भगवान को भी दी, अर्जुन को भी दिया, तो श्री पंचजन्य को मार करके पंचजन्य शंख लेकर के आए और यमराज जी के द्वार पर भगवान ने शंख वादन किया। जरा विचार करो, जब ठाकुर जी शंख बजाते होंगे तो कैसी शोभा होती होगी। द्वारका में जब शंख बजता है, भगवान बजाते हैं, सुखदेव गोस्वामी उस झांकी को देखते हैं। भागवत में बस यही तो है, गायन उनके लीला का और दर्शन उनके रूप का। सौच का से धवल दरो दरो अप्यूरो क्रमास्या धर शोण शोणिमा दाध मायमान कर कंज संपुटे यथा जखंडे कलहंस उत्सना। सुखदेव गोस्वामी क्या अलंकार देते हैं, बोले भगवान की उंगलियां रक्त वर्ण की है, उनकी हथेलियां बड़ी गुलाबी हैं, बोले सउच्च का से वो शोभायमान हो रहा है, श्वेत पेट वाला वो शंख धवलो दरो दरो। शंख का एक नाम है दर और उदर माने पेट, बोले सफेद पेट धारण करने वाला वो सफेद वस्तु शंख भगवान की उंगलियों में, उस संपुट में, भगवान के पंजों में ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे मानो एक गुलाबी कमल पर एक श्वेत राज हंस विराजमान होकर के कूज रहा हो। उत्सन यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सन। भगवान ने शंख वादन किया, यमराज जी को जानने में देर नहीं लगी, यमराज जी तुरंत आकर के पहुंचे, प्रभु क्या आज्ञा है? तो भगवान ने कहा आनीतम गुरुपुत्रम यहां मत्सासन पुरस्कृत, बोले सबसे पहले मेरे गुरुपुत्र को यहां लेके आओ। आनीतम यह गुरुपुत्रम निज कर्म निबंधनम, बोले निज कर्म से बंधा हुआ गुरुपुत्र को यहां लेकर के आओ, जल्दी लेकर आओ। तो यमराज जी माने कुछ कुछ और कुछ कहते हैं, बोले मत शासन पुरस्कृत, सबसे पहले मेरी आज्ञा का पालन करो। मान लीजिए यमराज जी कहेंगे उनके कर्मों के कारण वो आया है, ठाकुर जी ने कहा फाइल लाओ, अब हम सबको जीरो बना देंगे, सारे जीरो बना देंगे हम, उनके अच्छे बुरे सारे कर्मों को हम जला डालेंगे। मत शासन पुरस्कृत, यमराज जी तुरंत उनके पुत्र को लेकर कहते हैं जितने उम्र होनी चाहिए, जितना बड़ा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, ठाकुर जी उनको लेके आते हैं और अपने गुरु के चरणों में, गुरु माता के चरणों में दक्षिणा के रूप में समर्पण करते हैं। ये है भगवान की भगवत्ता कि यम भी मेरा शासित है, यम जी यम मेरा सेवक है, मैं उनका मालिक हूं। अरे भाई इस संसार डूब जाएगा, प्रलय हो जाएगी, कितने इंद्र चंद्र वरुण यम ये सब प्रलय काल में चले जाएंगे। अहमेवा स्मेवा अग्रे, पहली बात तो यही है कि अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, उमा दारू योषित की नाई सवई नचावत राम गुसाई। भगवान शंकर अपना अनुभव देते हैं, उमा जैसे कठपुतली को नचाता है कोई पीछे बैठ करके, ऐसे श्री राम श्री कृष्ण सबको नचाते हैं। उमा दारू योषित के नाई सवई नचावत राम गुसाई। अस्तु, पहली बात यह है कि अकेले ईश्वर कृष्ण यमराज ने प्रमाण करके दिखा दिया कि ये सेव्य है हम सेवक हैं, ये स्वामी है मैं दास हूं। इसलिए यमराज ने कहा वहां मत जाना। नंबर दो, काल। काल के अंतर्गत जो भी है यमराज के कब्जे में केवल वो ही जाएगा। काल से जो बाहर चला गया यमराज से वो बाहर चला गया। इसलिए यमराज ने कहा कि प्रभवाम दंडे, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, हमारे पास सीमा रेखा है कि 9 बजे से पहले बंद करो। पर आप लोग सभी जानते हो श्लोक का अर्थ बड़ा गहरा होता है। देखो वो उड़ गया, वो जानता है कि मेरा कोई मायना नहीं है। प्रभवाम दंडे, क्यों? यमराज ने साबित कर दिया कि मैं दास हूं। पर काल, शरणागति का रहस्य मित्रों है कि शरणागत के अंतर्गत काल की दाल नहीं गलती है। आप जरा विचार करो, यमराज किसके मालिक है? जो बुरे कर्म करेंगे उसी के मालिक है। एवं मन कर्म वसम प्रयुते अविद्या आत्मनि उपधीय माने। एवं मन कर्म वसम प्रयुते, जब मन कर्म के वशीभूत होता है यमराज के अधीनस्थ हो जाता है। वो अच्छा करेगा बुरा करेगा मिश्र करेगा, लेकिन शरणागति किसी कर्म के अंतर्गत नहीं आता। और भगवान जब नहीं, जब जब सृष्टि नहीं थी तो काल की रचना भी नहीं थी। इसलिए तृतीय कपिल उपाख्यान में, भागवत के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में 25वां तत्व माना गया काल। काल को जो परिभाषित करते हैं कपिल मुनि, उन्हें कहा व्हाट इज द टाइम फैक्टर। भगवान कपिल ने कहा काल पुरुषस्य विक्रमः, बोले पुरुष की जो शक्ति है उसी का नाम है काल। इसलिए कोई भी विज्ञानी कोई भी वैज्ञानिक काल तत्व को ना जाना ना जान पाएगा, क्योंकि भगवान के तत्व को जाना मुश्किल है। और भगवान ने स्वयं कहा है कालोस्मि लोक क्षत्रत प्रवृद्ध, मैं काल हूं, मेरे से कौन बच सकता है। वही कपिल उपाख्यान में भगवान कपिल कहते हैं न करहि चित मत पराशांत रूपे, हे मेरी मां न करहि चित मत पराशांत रूपे न क्षंति नो मे अनिमि सोलेणी हेति ये साम अहम प्रिया ये साम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदैव इष्टम। हे मां जिन्होंने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है मेरा काल चक्र उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। न करिचति मैं मत प्रशांत रूपे न क्षति नो, वो विनाश को प्राप्त नहीं होता। आगे के पर्याय में वही कहते हैं मद भयाति बात बातो यम मृत्युश्चरति मद भयात बरसती अग्नि दहति अग्नि मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात बरसति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। अब कपिल मुनि आवेश में आ जाते हैं, अब तो तत्पुरुष लेकर चलाते थे, अब मत मेरे भय से कहने लगे। आवेश हुआ कि मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से मृत्यु चलती है। इसलिए काल के अंतर्गत शरणागति नहीं है। जो काल से परे गया मानना चाहिए कि वो शरणागत भक्त हो गया। इसलिए यमराज जी कहते हैं जहां काल की दाल नहीं गलती है वहां पर मेरी दाल क्या गलेगी। अतः भक्त न प्रभवाम दंडे। और तीसरी बात यह है, पहली बात क्या है, एक स्वामी एक सेवक। दूसरी बात है काल बड़ा बलवान जो यमराज के अधीन नहीं है, यमराज जी बल्कि काल के अधीन है। और तीसरी बात है अपने मालिक के प्रति कृतज्ञता, मालिक के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति एक आज्ञानवर्तिता। कभी कभी मालिक अगर गलती भी कर दी ना, जो सेवक उसको मान लेता है वो ही बड़ा होता है। महाभारत में कई एक जगह में युधिष्ठिर ने जो किया वो करने लायक नहीं था। क्या हक था जो द्रौपदी को दांव पर लगा दे, पर एक भी भाई जवान नहीं खोला। तो मालिक के प्रति एक कृतज्ञता का भाव, एक अनुशासन का भाव ये रहना चाहिए। इसलिए यमराज ने कहा नैसाम वयम न पयः प्रभवाम दंडे। भक्तों तीन बात है, पहली बात है एक स्वामी एक सेवक, प्रभु तुम स्वामी हम दासा। दूसरी बात है काल महान शक्तिशाली, अर्जुन के जवाब में कहते हैं कालोस्मी लोक क्षकृत प्रवृद्ध लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त रितेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु युद्धा। और तीसरी बात है कृतज्ञता। इन सब बातों को लेकर के विचार किया जाए, हम सभी भक्तों को काल विलंब किए बगैर भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। जो भक्त जितनी मात्रा में शरणागत है वो उतना सुरक्षित है, वो उतना भगवान का दुलारा है, वो उतना आनंद में है, वो उतनी शांति में है, बाकी सारे अशांत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाई मैं समझता हूँ खाते खाते जिंदगी बीत गई है, खाओगे कोई तुम्हारा प्रसाद लेके नहीं जा रहा है। अतः हम सभी भक्तों को बड़े ही परिश्रम पूर्वक बड़े ही लगन के साथ सांस सांस को ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी की शरणागति ले लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, द्वादश महाजन श्री यमराज की जय, काल दंड की जय, समस्त भक्त जन की जय, शरणागति की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।